بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب بلائنڈ آپریشن ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ اس کا پارٹ 7 ہے. اس کے مصنف صفدر شاہین ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. گڈ. میں اس آپریشن کے لیے سی آئی اے سمیت تمام ایجنسیوں کو دہشت گردوں کی گرفتاری تک آپ کی کمان میں دیتا ہوں تاکہ 24 گھنٹے کے اندر آپریشن مکمل کیا جا سکے. صدر نے حتمی لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سٹنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا. عمران اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھا ٹیلی ویژن پر نیوز بلٹن دیکھ رہا تھا جس میں گزشتہ رات تباہ ہونے والی آرڈیننس فیکٹری کے حوالے سے خبریں شامل تھیں. عمران اور صفدر نے فیکٹری سے واپسی پر شمال مغرب کی سمت میں سے ولٹن کی طرف آنے کی بجائے مشرق جانب سفر کیا تھا کیونکہ عمران کو یقین تھا کہ ولٹن سے لازمی طور پر امدادی ہیلی کاپٹرز کو فیکٹری بھیجا جائے گا اور عمران ان سے ٹکراؤ کے بغیر دارالحکومت پہنچنا چاہتا تھا. شہر کی مشرقی جانب انہوں نے کھیتوں میں لینڈنگ کی تھی اور جب وہ دو کلو میٹر پیدل سفر کر کے اندھیری گلیوں میں چھپتے چھپاتے اپنی کیمپئن گاہ پہنچے تو دارالحکومت میں بھوچال سا آ چکا تھا اور پولیس آرمی اور دوسرے اداروں کی گاڑیاں جائے حادثہ کی طرف بھاگی جا رہی تھی. دفتر ٹیلی ویژن کی گھنٹی بجی تو تمام ممبرز فون کی طرف متوجہ ہو گئے. عمران نے میز پر رکھے فون کا ریسیور اٹھایا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کیا. ہیلو, پرنس آف ڈیم بول رہا ہوں, اس نے محتاج لہجے میں کہا. براؤن بول رہا ہوں جناب, دوسری جانب سے ایکسٹو میں مقامی ایجنٹ کی آواز سنائی دی. یس, کیا خبر ہے پیارے؟ عمران نے جلدی سے کہا. حکومت میں زلزلہ آیا ہوا ہے جناب اور اب وائٹ روز ایجنسی دہشت گردوں کو تلاش کر رہی ہے, براؤن نے مدبانہ لہجے میں کہا. تو عمران بے اختیار چوک پڑا. وائٹ روز؟ سی آئی اے کیوں, کیا ہوا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. سی آئی اے کے چیف نے اپنی ناکامی پر مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا. گزشتہ رات ایوان صدر میں اعلی سطح میٹنگ کال کی گئی تھی جس میں تینوں مسلح افواج کے علاوہ پولیس اور خفیہ ادارے کے سربراہوں نے شرکت کی تھی. اس میں صدر نے سی آئی اے کے چیف کرنل بریڈلے پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا اور آرڈیننس فیکٹری کی تباہی کا ذمہ دار سی آئی اے کو ٹھہرایا تھا. کرنل بریڈلے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام ایجنسیوں کی مدد سے کل شام تک دہشت گردوں کو گرفتار کرے, لیکن کرنل بریڈلے نے یہ ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے صدر سے کہا کہ وہ استعفی دینا چاہتے ہیں. تب صدر نے وائٹ روز ایجنسی جو کہ سی آئی اے کے بعد سب سے بڑی اور خطرناک ایجنسی ہے کے چیف کرنل ہونگن کو حکم دیا کہ وہ دہشت گردوں کو گرفتار کرے اور ان کی گرفتاری تک تمام خفیہ اداروں کو کرنل ہوگن کے ماتحت کر دیا گیا تاکہ وہ کل شام تک ہر صورت میں کامیابی حاصل کر سکیں, براؤن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا. گویا اس وقت تمام خفیہ ایجنسیاں دہشت گردوں کی تلاش میں مصروف ہیں, عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. جی ہاں, آرمی میجر پیٹرک کے ہم شکل کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے کیونکہ میجر پیٹرک کی لاش اس کے بنگلے سے دریافت کر لی گئی ہے اور یقین کر لیا گیا ہے کہ اس کے میک اپ میں دہشت گرد آرڈیننس فیکٹری میں پہنچا تھا اور اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سی آئی اے کا ہیلی کاپٹر تباہ کیا تھا اور اپنی جیب میں خود ہی سڑک کے جیب نشیب میں گرائی تھی, پھر کیپٹن فورس کی جیب میں فیکٹری پہنچا تھا. دوسری طرف سے براؤن کی آواز سنائی دی. شہر کی کیا صورتحال ہے؟ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا. وائٹ روز اور دوسری ایجنسیاں دارالحکومت میں خفیہ طور پر آپریشن کر رہی ہیں تاکہ شہر میں افراتفری اور بدنظمی پیدا نہ ہو اور امن و امان کے حوالے سے اکریمیا کی جنگ جگہ سائی نہ ہو. شہر کی ہر سڑک, گلی, دکانیں, مارکیٹوں, ہوٹلوں, ریسٹورینٹوں, کلبوں, پارکوں اور تفریح مقامات پر خفیہ ایجنسی کے اہلکار متعین ہیں جو ہر آنے جانے والے کو شائستہ انداز میں چیک کر رہے ہیں اور میجر پیٹرک کی تصویر دکھا کر پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کو کسی نے دیکھا تو نہیں. چند حکومت مخالف اکریمی باشندوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں بھی لیا گیا ہے, براؤن نے جواب میں کہا. ٹھیک ہے, हम फिलहाल आराम करेंगे, तुम मुझे हालात से बराबर मुतल्ला करते रहना। ओके, इमरान ने आखिर में कहा और फोन बंद कर दिया। इमरान साहब, हम कल से आराम कर रहे हैं और कितने दिन आराम करना है? चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिलहाल तो हम चूहे दान में फंसे हुए हैं, बाहर निकलने की कोशिश की तो हम कुचल दिए जाएंगे, इसलिए एक हफ्ता और आराम करना पड़ेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। एक हफ्ता और? इतनी देर हम यहाँ क्या करेंगे? जूलिया ने चौंककर कहा। बकोक कन्फ्यूशियस तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, इमरान ने शोक लहजे में कहा तो मेंबर्स मुस्कुराने लगे। बकवास मत करो, क्या तुम कन्फ्यूशियस का नाम लिए बगैर बात नहीं कर सकते? जूलिया ने इसे घूरते हुए कहा। मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने, इसलिए नाम लेने में क्या कबाहत है? वैसे तुम अभी शहर की सूरत हाल के बारे में सुन ही चुकी हो, ऐसे में हमारा बाहर निकलना बेर को दावत देने के मुतरादिफ है, इमरान ने कहा। बेर का क्या मतलब है? सीधी तरह क्यों नहीं बताते? जूलिया ने गुस्से लहजे में कहा। उफ, मैं कैसे बताऊं कि आबेल मुझे मार, किस दानिश्वर ने कहा है? इमरान ने बेचारगी के अंदाज में कहा। वो अहमक दानिश्वर तुम्हारे सिवा कोई नहीं हो सकता, जूलिया ने बेख्तियार मुस्कुराकर कहा तो दूसरे मेंबर भी मुस्कुरा दिए। नहीं, मेरा कॉल तो ये है कि जब गीदर की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, और अगर हमारी शामत आई तो हम इस बंगले से बाहर निकलेंगे। सफदर, तुम जरा जूलिया को समझाओ, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। इमरान साहब ठीक कह रहे हैं मिस जूलिया, मौजूदा हालात में यहाँ से निकलना मौत को दावत देने के कम से कम नहीं। एजेंसियां कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघती फिर रही हैं, सफदर ने जूलिया से कहा। इसीलिए तो कहता हूँ कि परफ्यूम कम इस्तेमाल किया करो, इमरान ने जूलिया की तरफ देखकर जल्दी से कहा। बको मत, तुम क्या परफ्यूम नहीं लगाते? जूलिया ने गुस्से से कहा। नहीं, बेशक सूंघकर देख लो, मेरी बू से तो कुत्ते दूर भागते हैं, इमरान ने मुस्कुराकर कहा तो जूलिया बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी और मेंबर्स इमरान की बात पर बेख्तियार मुस्कुराने लगे। इमरान साहब, ये भी तो मुमकिन है कि खुफिया वाले हमारी तलाश के लिए कुत्तों से मदद लें। चंद लम्हों बाद सफदर ने संजीदा लहजे में कहा तो इमरान चौंक पड़ा। हाँ, मुमकिन तो है, लेकिन तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? इमरान ने सफदर की तरफ देखकर कहा। आपने खुद ही तो कहा है एजेंसियां कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघती फिर रही हैं, तो इस मकसद के लिए वो कुत्तों को इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात हम जिस हेलीकॉप्टर में फैक्ट्री में फरार हुए थे इसमें हमारी बू और उंगलियों के निशानात मौजूद हैं, सफदर ने वजाहत करते हुए कहा। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन क्या कुत्तों को सिर्फ पुलिस इस्तेमाल करती है? एजेंसियां जदीद तरीन आलात के जरिए मुजरिमों का सुराग लगाती हैं और सैटेलाइट से भी मदद लेती हैं। बाकी रहे उंगलियों के निशानात, तो ये सिर्फ इसी सूरत में इनके काम आ सकेंगे जब हम दोनों पकड़े जाएं, और जब हम बाहर निकलेंगे तो कैसे पकड़े जाएंगे, इमरान ने जवाब में कहा तो इसके साथ ही मुतमईन नजर आने लगे। तीसरे रोज इमरान ने हरकत में आने का फैसला किया। गुज़िश्ता दो दिन में इसका एक्सिटो के मुकाम एजेंट अब्रार और ब्राउन और अपने मुखबर पार्टी से फोन पर राबता रहा, जो इसे शहर की सूरतहाल, हुकूमती इकदाम और एजेंसियों की कारकर्दगी से मुताला करते रहे। व्हाइट रोज एजेंसी और दूसरे खुफिया इदारे अभी तक चंद मुश्तबा अफराद को पकड़ने के सिवा कोई कामयाबी हासिल ना कर सके थे, और अब क्रीमिया के दूसरे शहरों में सर्च ऑपरेशन किए जा रहे थे। हुकूमत के मुसलसल दबाव के बावजूद एजेंसियों की कारकर्दगी जीरो थी, जबकि अवाम और टीवी एंकर्स हुकूमत को लथार रहे थे और अपोजिशन लीडर्स भी हुक्मरान पार्टी के खिलाफ अवाम से इश्तियाल पैदा कर रहे थे। वो अपनी तकरीरों और बयानात में न सिर्फ एक्रीमिया में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाकियात में मरने वाले फौजियों की हलाकत का खौफ का हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, बल्कि बहादुरस्तान और इराक ऑपरेशन की जोर शोर से मुखालिफत और वहां से एक्रीमी फौज को वापस बुलाने का मुतालबा कर रहे थे। हुकूमत अपोजिशन की तनकीद से बौखला रही थी, इसलिए एक्रीमी सदर बार बार व्हाइट रोज एजेंसी के चीफ से बाज पर्स कर रहे थे। इस वक्त शाम के 7 बजे थे। ड्राइंग रूम में जूलिया, चौहान, सफदर और खावर चाय पी रहे थे, मगर इनकी तवज्जो इमरान की तरफ मरकूज थी, जो फोन पर मार्टी से बात कर रहा था और फोन लाउडर ऑन था। इसका नाम कैप्टन शिराड है और वो नेवी के एक गश्ती स्टीमर का इंचार्ज है। इसकी ड्यूटी साहिल समंदर पर होती है। साहिल पर पैराकी और नहाने के लिए आने वालों को जब समंदर में जान का खतरा पैदा होता या वो डूब जाते तो कैप्टन शिराज और इसके मातहत इनकी मदद करते हैं। कैप्टन शिराज अधेड़ उम्र मगर अयाश आदमी है। सूरज गुरुब होने के बाद वो शहर आ जाता है और आधी रात तक नाइट क्लब में वक्त गुजारता है। इसके अलावा वो नाजायज जराए से भी दौलत कमा रहा है जिसे वो अय्याशी पर खर्च करता है। अगर इसे बड़ी रकम की पेशकश की जाए तो वो इनकार नहीं करेगा, मार्टिन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। क्या इसकी ड्यूटी शाम को खत्म हो जाती है? इमरान ने पूछा। नहीं, इसकी ड्यूटी शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक होती है। इसकी गैर मौजूदगी में इसके मातहत 12 बजे तक समंदर में ही रहते हैं, मार्टिन ने जवाब में कहा। क्या वो तुम्हारे क्लब में आता है? इमरान ने कुछ सोचकर कहा। कभी कभी आता है और मेरी इससे शनासाई भी है। एक मरतबा वो मेरे क्लब में जुए के दौरान बुरी तरह हार गया था और इसे मजीद रकम की जरूरत थी। इसकी दरख्वास्त पर मैंने इसे वो $2,000 दिए और इसने दोबारा खेलकर अपनी हारी हुई रकम से 3 गुना ज्यादा रकम जीत ली थी, इसलिए मेरी रकम तो वापस कर दी थी। लेकिन इस रोज से वो मेरा एहसान मंद है और जब भी मिलता है या फोन पर रब्ता होता है तो मेरे एहसान का जरूर जिक्र करता है, मार्ट ने तफसील से कहा। ठीक है, कितनी रकम में वो मान जाएगा? इमरान ने कहा। $10,000-15,000 इसके लिए बड़ी रकम है, मार्टी की आवाज़ सुनाई दी। गुड, तुम इससे बात करो और इसे $30,000 की पेशकश करो, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। राइट सर, काम क्या होगा? मार्टिन ने पूछा। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम इससे बात कर लो और मुझे निस घंटे के अंदर अंदर जवाब दो, मैं तुम्हारी कॉल का मुंतजर रहूंगा। ओके, इमरान ने आखिरी में कहा और फोन बंद कर दिया। रात के 10 बजे तफरी साहिल की पार्किंग में कैप्टन शेराड अपनी कार में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। अधेड़ उमर शेराड दराज कामत और कवि अलजैसा शख्स था। इसके जिस्म पर नेवी की मखसूस यूनिफॉर्म थी और वह बार बार पार्किंग के दाखिली गेट की तरफ देख रहा था। चंद लम्हों बाद पार्किंग में एक सफेद कार दाखिल हुई और इसमें फ्रंट सीट पर बैठे शख्स को देखकर कैप्टन शेराड ने इत्मीनान का सांस लिया। वो शख्स मार्टी क्लब का मालिक मार्टी था। कार में मार्टी के अलावा ड्राइवर और अकबी नशीस पर 3 अफराद बैठे थे। ड्राइवर सिया फार्म एक्रीमी था, अलबत्ता बाकी 3 एक्रीमी सफेद फार्म थे। कैप्टन शेराड अपनी कार से उतरा और मार्टी की कार की तरफ बढ़ गया जो पार्किंग में दाखिल होते ही रुक गई थी। मार्टी और अकबी नशीस पर बैठे 3 अफराद भी कार से बाहर आ गए। हेलो मार्टी, तुम 5 मिनट लेट आए हो, कैप्टन शेराड ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल पर बार बार रुकना पड़ा था, मार्टी ने इससे मुसाफिया करते हुए हंसकर कहा। हेलो प्रिंस, कैप्टन शेराड ने बाकी 3 में से एक अधेड़ उम्र आदमी को मुखातिब करके कहा। 1 घंटा पहले इसने मार्टी क्लब में इसी आदमी से मुलाकात की थी। मार्टी ने इसका नाम प्रिंस बताया था और प्रिंस ने अपना नाम प्रिंस ऑफ डैम बताया था। वहां प्रिंस के साथ मार्टी ने कैप्टन शेराड की डील कराई थी और प्रिंस ऑफ डैमिट के रूप में इमरान ने इसे बताया था कि वो अपने आदमियों के साथ बाल्टी मोर पहुंचना चाहता है जहां इसकी माल बरदार लॉन्च एक वीरान वबियाबाद जजीरा नमा टामो पर मौजूद है और चूंकि इस पर स्मगल किया हुआ सोना मौजूद है इसलिए वो अपना सोना महफूज तरीके से वेलिंगटन में लाना चाहता है। प्रिंस ने यह शर्त भी आयद की कि कैप्टन शेराड के तमाम मातहत यहां साहिल पर मौजूद रहेंगे और सिर्फ कैप्टन शेराड ही इसके साथ जाएगा। इस सूरत में कैप्टन शेराड को $30,000 के अलावा नस किलो सोना भी दिया जाएगा। इस पेशकश को कैप्टन शेराड ने कबूल कर लिया था। ये मेरे मातहत हैं, प्रिंस ने अपने दोनों साथियों के बारे में कैप्टन शेराड से कहा। आइए, मैंने अपने मातहतों को आराम करने शहर भेज दिया है, स्टीमर पर सिर्फ ड्राइवर है, कैप्टन शेराड ने सहलाते हुए कहा। तो प्रिंस, यानी इमरान और इसके दोनों साथी जो कि खावर और चौहान थे, कैप्टन शेराड के साथ पार्किंग से बाहर चले गए और मार्टी वापस अपनी कार में बैठकर वापस जाने के लिए कार बैक करने लगा। थोड़ी देर बाद इमरान खावर और चौहान साहिल के करीब खड़े कैप्टन शेराड के स्टीमर पर पहुंच गए। स्टीमर पर सिर्फ एक ड्राइवर मौजूद था। कैप्टन शेराड ने इसे रवानगी का हुक्म दिया और खुद कैबिन में इमरान और इसके साथियों के पास बैठ गया। प्रिंस, आपने बताया था कि आप प्रिंस ऑफ डैमिट में हैं, लेकिन मुझे अब तक याद नहीं आ सका कि डैमिट किस इलाके या मुल्क का नाम है और बड़े आजम एक्रीमिया में कहां पर वाकई है, कैप्टन शेराड ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। डैम कोई बड़ी और मशहूर जगह नहीं है बल्कि ये हमारे खानदान और नस्ल का नाम है। हमारे जद अमजद का नाम रिचर्ड ऑफ डैम था, इसके बाद डैम खानदान का हर सरबरा प्रिंस ऑफ डैम कहलाने लगा। फ्लाडिफना के नवा में हमारा गांव है और इसका नाम भी डैम्प है, इमरान ने जवाब में कहा। तो खावर और चौहान इसकी बेतकी वजाहत पर आहिस्ता से मुस्कुरा दिए। अलबत्ता कैप्टन शिराज काफी मुतासिर नजर आने लगा। लॉन्च में आपके कितने मातहत या अमला के अफराद हैं? कैप्टन शिराज ने जीप से जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर कहा। 6 अफराद, इन्हें भी वहां से लाना है। क्या इनके लिए यूनिफार्म मिल सकती है? इमरान ने कहा। यूनिफार्म की क्या जरूरत है प्रिंस? कैप्टन शिराज ने चौंककर कहा। असल में मुझे अंदेशा है कि वापसी में कोस्ट गार्ड या सी पोर्ट पर नेवी पुलिस इनसे पूछताछ ना करे, और इसके पास शनाख्ती कागज भी नहीं है, लेकिन यूनिफार्म में इस पर कोई शुभ नहीं कर सकेगा, और तुम जरूर जरूरत पड़ने पर इन्हें अपने मातहत जाहिर करके पूछताछ से महफूज रहोगे। यहाँ क्या गलत कह रहा हूँ? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। वाकई आप दुरुस्त कह रहे हैं प्रिंस, मेरी जहन में ये बात नहीं आई कि आप और आपके साथियों पर शुभ किया जा सकता है, क्योंकि आप भी सिविल ड्रेस में हैं। खुशकिस्मती से मेरे मातहत लाइफ गार्ड लिबास बदल कर शहर गए और इनके यूनिफार्म यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यूनिफार्म सिर्फ 6 हैं, जबकि वापसी पर आपकी लॉन्च के अमला समेत आप 9 अफराद होंगे, कैप्टन शिराज ने जल्दी से कहा। नो प्रॉब्लम, वापसी पर मैं सिर्फ 3 साथियों को लाऊंगा, इमरान ने बेफरवाही से कहा। कैप्टन ने हैंगर्स पर लाइफ गार्ड की मखसूस वर्दियां लटकी हुई थी। चंद लम्हे बाद इमरान, खावर और चौहान यूनिफार्म पहन चुके थे। स्टीमर अंधेरे समंदर में फुल रफ्तार से रवा दवा थी, लेकिन इमरान की मंजिल वो नहीं थी जो इसने कैप्टन शिराज को बताई थी। इन्हें बाल्टी मोर की बंदरगाह से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मशरक की जानिब एक छोटे से जजीरे तक पहुंचना था, जहां इसराइल के लिए इसराइली सरमाए से एक जदीद मिसाइल प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा था, और वो प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में था। ये प्रोजेक्ट अगर इसराइल में तामीर किया जाता तो अंदेशा था कि इस्लामी दुनिया का कोई मुल्क इसे तबाह कर देता, इसलिए इसराइल की दरख्वास्त पर क्रीमिया ने यह प्रोजेक्ट अपने जजीरे पर कायम करने की न सिर्फ इजाजत दी थी, बल्कि बड़ी तादाद में इसे अपने माहिरीन और तकनीकी अमला भी फराहम किया था। जाहिर है कि इस प्रोजेक्ट पर तैयार किए जाने वाले मिसाइल यहूदी हुकूमत ने अपने दुश्मन इस्लामी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने थे, इसलिए इमरान ने पाकिस्तान वापस जाने से पहले इस प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाने का फैसला किया था। क्योंकि स्टीमर पर एक्रीमिया नेवी का झंडा भी नस था और लाइफ गार्ड के अल्फाज भी लिखे थे, इसलिए रास्ते में नेवी की कश्तियां स्टीमर्स कई मरतबा इनके करीब से गुजरे, मगर किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, और इनका स्टीमर रुकावट के बगैर सफर करता रहा। सुबह होने से 1 घंटा पहले ताकि इन्होंने तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। इस दौरान इमरान और इसके साथी जागते रहे थे। कैप्टन शिराज सुबह 5 बजे सो गया था। इमरान ने अपने प्लान के मुताबिक इसे बेहोश कर दिया था, फिर खावर और चौहान को ड्राइवर की निगरानी के लिए भेजा। इनकी गैर मौजूदगी में इसने अपने चेहरे पर कैप्टन शिराज का मेकअप किया और फिर इसके यूनिफार्म पहने के बाद वो मुकम्मल तौर पर कैप्टन शिराज नजर आने लगा। फारिग होकर वो कैप्टन से निकला। स्टीमर ड्राइवर के पास आ खड़ा हुआ, जबकि खावर और चौहान इसके इशारे पर कैबिन में चले गए। इमरान ने कैप्टन शिराज के लबो लहजे में मॉरिस नामी ड्राइवर से सफर की पोजीशन मालूम की, तो मॉरिस को जरा भी शक न हुआ कि वो कैप्टन शिराज की बजाय कोई और है। इसी वक्त हम बाल्टी मोर से 100 किलोमीटर पीछे हैं सर, मॉरिस ने मौदमाना लहजे में कहा। ठीक है, यहाँ से मशरक की सिमत मुड़ जाओ, हमें नोबल आईलैंड की तरफ जाना है, इमरान ने कहा। ओह, नोबल आईलैंड, वो तो ममनू जजीरा है सर, किसी स्टीमर या जहाज को इस तरफ जाने की इजाजत नहीं है। मैंने सुना है कि इस पर कोई दाफे प्रोजेक्ट बनाया गया है, मॉरिस ने चौंकते हुए कहा। मुझे मालूम है, लेकिन हमें इस जजीरे पर नहीं जाना, बल्कि इससे चंद किलोमीटर बाएं जानिब एक डामो पर पहुंचना है, जहां प्रिंस की लॉन्च लंगर अंदाज है। और जानते हो इस लॉन्च में क्या है? इमरान ने मुस्कुराकर कहा। यस सर, आपने बताया था इसमें करोड़ों डॉलर मालियत का सोना है, और हमने प्रिंस को खत्म करके इस सोने पर कब्जा करना है, मॉरिस ने जवाब में कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। हाँ, और सोने में तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा, कम से कम नस किलो, इमरान ने सहिलाकर कहा। सर आपने पहले 1 किलो देने का वादा किया था, मॉरिस ने जल्दी से कहा और स्टीमर का रुख मोड़ने लगा। हाँ हाँ 1 किलो ही दूंगा, और इस शर्त पर कि बाकी मातहतों को इल्म न होने पाए, क्योंकि वो भी अपना हिस्सा मांगेंगे और न मिलने पर हेडक्वार्टर्स को सारे मामले से आगाह कर देंगे, इमरान ने कहा। आप बेफिक्र रहें सर, मैं कभी जबान नहीं खोलूंगा, लेकिन हम प्रिंस और इसके साथियों पर कैसे काबू पाएंगे जबकि हम सिर्फ दो हैं, मॉरिस ने कहा। ये कोई मसला नहीं है, वक्त आने पर तुम देखोगे कि मैं इन्हें कैसे मछलियों की गिजा बनाता हूँ। बस तुम तवज्जो से स्टीमर चलाओ और जब नोबिल आए आइलैंड आने के आसार नजर आए तो मुझे बता देना, इमरान ने इसे हिदायत करते हुए कहा और वापस केबिन में आ गया जहाँ फर्श पर कैप्टन शिराज बेहोश पड़ा था। इमरान साहब इसका क्या करना है, खावर ने शिराज की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसे मौत की सजा देनी है, इमरान ने इनके करीब बैठे हुए कहा तो खावर और चौहान चौंक पड़े। सजा किस जुर्म की, चौहान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस बकबक ने हमें हलाक करने और हमारे सोने पर कब्जा करने का प्लान बना रखा था, जिसका मुझे अभी मोरस से इल्म हुआ है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मोरस का बयान दोहरा दिया। इस गधे को ये एहसास नहीं हुआ था कि अब खुद ही इसका शिकार होने वाला है, खाविन ने हंसकर कहा। हाँ अब साइलेंसर रिवॉल्वर की एक गोली इसके सर में उतार कर स्टीमर के अगली जानी से समंदर में डाल दो इसे, इमरान ने सहिलाकर कहा। तो खावर और चौहान ने इसकी हिदायत पर फौरन अमल कर डाला। वो दोनों कैप्टन शिराज को समंदर बर्त करके वापस आए तो इमरान इन्हें अपने अंदर आइंदा प्लान के बारे में बताने लगा। दोपहर से कुछ देर पहले मोरस ने काफी फासले तय कर लिया और बहुत दूर समंदर में एक जजीरा का धुंधला सा खाका दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद वो खाका कदरे वाजे हो गया और जजीरे के साहिल पर लंगर अंदोज दो बहरी जहाज भी नजर आने लगे। अभी जजीरा तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था। इमरान के हुक्म पर मोरस ने स्टीमर का रुख जरा तब्दील किया, क्योंकि इमरान जजीरे की शुमारी जानिब से जजीरे के अकब में पहुंचना चाहता था। खाविर और चौहान भी इमरान के करीबी खड़े थे। थोड़ी देर पहले इमरान ने स्टीमर ड्राइवर को बताया था कि इसने प्रिंस को खामोशी से खत्म करके समंदर की नजर कर दिया था और अब स्टीमर पर प्रिंस के सिर्फ दो मातहत बाकी हैं, जब प्रिंस की लॉन्च तक इसकी रहनुमाई करेंगे। ये बात इसने ड्राइवर को इसलिए बताई थी कि वो प्रिंस के गायब होने पर कोई सवाल न करे। थोड़ी देर बाद वो जजीरे की शुमाली सिम में पहुंचे तो इस तरफ कोई साहिल नहीं था और जजीरे पर कायम इमारतें नजर आ रही थी। जजीरे के साहिल के पास खड़े दोनों जहाजों पर इसराइली परचम लहरा रहे थे, जबकि वहां चंद स्टीमर भी मौजूद थे। तकरीबन 2 किलोमीटर में फैला हुआ जजीरा 3 एतराफ में चट्टानों और पहाड़ों पर मोहित था और सिर्फ मगरबी जानिब साहिल था। सतह अब से तकरीबन 30 फीट बुलंद जजीरे के एतराफ के चट्टाने कई कटी पिटी और इनमें बड़ी बड़ी दरारें थी। इमरान ने दूरबीन से शिमाली चट्टानों का जायजा लिया, मगर इस जानिब से जजीरे पर पहुंचने का कोई मुनासिब रास्ता नजर न आया। इसने मोरिस को जजीरे के अकब में चलने का हुक्म दिया। सर प्रिंस की लॉन्च कहाँ है, मोरिस ने कहा पूछा तो इमरान ने मुनासिब जवाब के मोरिस को एतमाद में लिया जाए या फिर इससे पीछे छुड़ाया लिया जाए। यूं भी इन्हें अब मोरिस की कोई खास जरूरत नहीं थी। सुनो मोरिस, प्रिंस ने गलत बयानी की थी कि सोना इसकी लॉन्च में है। प्रिंस के इन दोनों मातहतों ने थोड़ी देर पहले बताया है कि असल में इस जजीरे पर सोने की एक कान है और प्रिंस इस कान से सोना निकालना चाहता था। अभी दोनों मुझसे अपनी जिंदगी के बदले तावुन कर रहे हैं, ये कान की निशानदेही करेंगे। तुम्हारा क्या इरादा है, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक मिशन है। जजीरे पर हमें सिक्योरिटी से भी टकराना है और इन्हें हलाक किए बगैर हम कान तक नहीं पहुँच सकते। पकड़े जाने की सूरत में मुझे अंदेशा है कि तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझसे गद्दारी करोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें खत्म कर दिया जाए, इमरान ने इंतहाई सर लहजे में कहा। नहीं 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 सर, मैं तो हमेशा से आपका वफादार हूँ। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ लेकिन आपसे गद्दारी का तसव्वुर नहीं कर सकता, मर्ज ने घबराकर जल्दी से कहा। ओके, लेकिन याद रखो खतरे की सूरत में तुमने मेरे खिलाफ जबान खोली तो तुम्हारे मुंह से कोई लफ्ज निकलने से पहले ही तुम्हें शूट कर दूंगा, इमरान ने मोरिस को वार्निंग देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद स्टीमर जजीरे की मशरिकी जानी पहुंचा तो इस तरफ भी बुलंद बाला चट्टाने वाकई थी। इमरान ने दूरबीन से इस चट्टान का जायजा लिया तो वहां कोई गार्ड वगैरह नहीं था। इसने मोरिस को जजीरे के करीब पहुंचने का हुक्म दिया और खुद चौहान और खावर के साथ कैबिन में आ गया। جزیرے کے قریب یقینی طور پر پانی میں چھپی چٹانیں ہوں گی، لہٰذا ہم لائف بوٹ چٹانوں کے پاس پہنیں گے، تم لوگ کھوتا گوری کے لباس پہن لو، عمران نے خاور چوہان سے کہا اور خود بھی ایک لباس پہننے لگا۔ کھوتا گوری کے یہ مخصوص لباس پہننے سے اسٹیمر میں موجود تھے اور ان کے ساتھ آکسیجن سلینڈر بھی منسلک تھے، البتہ اسلحے کے طور پر ان کے پاس صرف اپنی ریوالور اور دیگر خفیہ ہتھیار تھے۔ چند منٹ بعد وہ تینوں تیار ہو کر باہر آئے تو جزیرہ اسٹیمر سے تقریباً نصف کلومیٹر دور رہ گیا تھا۔ موریس، اسٹیمر کا انجن بند کر دو اور کچھ فاصلہ طے کر کے رک جانا، عمران نے موریس سے کہا۔ تو موریس انجن بند کر دیا اور اسٹیمر سست رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ چونکہ انجن بند تھا اس لیے آہستہ آہستہ کی رفتار بھی کم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر جزیرے کے چٹان ساحل سے تقریباً 100 فٹ کے فاصلے پر رک گیا۔ چونکہ یہ فاصلہ معمولی تھا اس لیے عمران نے لائف بورڈ استعمال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسٹیمر پر جزیرے کی چٹانوں کا سایہ پڑ رہا تھا، عمران چاہتا تھا کہ اسٹیمر کو کسی طرح چٹانوں کے مزید قریب لے جایا جائے تاکہ چٹانوں کی آڑ میں ہونے کے سبب اسے بلندی سے نہ دکھایا جا سکے۔ موریس، تم اسٹیمر کو کنٹرول کرو، ہم اسے رسے کے ذریعے کھینچ کر اس چٹان کے قریب لے جائیں گے جو پانی پر جھکی ہوئی ہے، عمران نے موریس سے کہا اور اس چٹان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جو سمندر پر اس حد تک جھکی ہوئی تھی کہ اسٹیمر کے لیے سائبان کا کام دے سکتی تھی، جبکہ وہ چٹان اطراف سے اندر کو کافی حد تک دبی ہوئی تھی۔ اس چٹان کے نیچے اسٹیمر محفوظ رہے گا اور تم ہماری واپسی تک یہیں رہو گے، ہم اندھیرا پھیلنے سے پہلے واپس آ جائیں گے، عمران نے موریس سے دوبارہ کہا۔ اتنی دیر میں عمران کے اشارے پر چوہان اور خاور اسٹیمر کے فرنٹ ریلنگ کے ساتھ مضبوط رسہ باندھ چکے تھے۔ عمران، خاور اور چوہان رسہ پکڑ کر اسٹیمر سے پانی میں اترے اور چٹان کی سمت تیرتے ہوئے اسٹیمر کو کھینچنے لگے۔ تیرنے کے ساتھ رسہ کھینچنا آسان کام نہ تھا، اسٹیمر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اتفاق سے وہاں زیر آب کوئی پتھر یا چٹان نہیں تھی، اس لیے وہ چند منٹ کی مسلسل کوشش سے اسٹیمر کو چٹان کے جھکے ہوئے حصے کے نیچے لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر عمران نے رسے چٹان کی ایک ببری ہوئی کیگر کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس طرح سے فارغ ہو کر عمران کچھ فاصلے پر موجود دوسری چٹان کی طرف بڑھا جسے وہ پہلے ہی تار چکا تھا۔ اس چٹان میں ایک گزشتہ شگاف تھا جو بالکل سیدھا نظر نہیں بلکہ ترچھا تھا اور نیچے سے بتدریج اوپر تک چلا گیا۔ اس شگاف کا کچھ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمران نے قریب پہنچ کر اس شگاف کا جائزہ لیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تو خاور اور چوہان تیرتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی شگاف کا جائزہ لیا۔ شگاف کے اہتمام پر جزیرے کی سطح دکھائی دے رہی تھی اور شگاف کی چوڑائی 6 فٹ سے کم نہ تھی۔ عمران نے شگاف کے ذریعے اوپر پہنچنے کا فیصلہ کیا اور غوطہ خور کا لباس اتارتے ہوئے اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی لباس سے چھٹکارا پانے کی ہدایت کی۔ لباس اتار کر انہوں نے وہیں چھپا دیے۔ اس کے بعد عمران شگاف میں قدم جما کر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ خاور اور چوہان اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اس دہلوان شگاف کے اختتام پر پہنچ کر عمران نے چہرہ باہر نکال کر احتیاط سے آس پاس کا جائزہ لیا تو ہر طرف چھوٹی بڑی چٹانیں اور پہاڑ پھیلی ہوئی تھی، لیکن محافظ یہاں کوئی زیرو نظر نہ آ رہا تھا۔ چنانچہ وہ خاور اور چوہان کے ساتھ اطمینان سے باہر آیا، سامنے کی جانب چند چٹانوں کی طرف دیکھا۔ عمران نے خاور اور چوہان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں راستے کی چٹانوں کے دائیں بائیں سے گزرتے ہوئے بلند پہاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ اس پہاڑ کے بالکل قریب ایک دوسری پہاڑی تھی اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان 15-16 فٹ کا فاصلہ تھا۔ عمران نے رخ بدلا اور اس درے کی طرف محتاط قدموں سے بڑھنے لگا۔ ابھی تک انہیں کوئی محافظ نظر نہیں آیا تھا، شاید اس جانب پہرے کا انتظام نہیں کیا گیا کہ اس جانب سے کسی کا خطرہ امکان نہ تھا۔ خطرہ صرف فضا سے یا پھر ساحل کی جانب سے ہو سکتا تھا۔ فضا کی محافظت کے لیے ایک بلند پہاڑ پر ریڈار حرکت کر رہا تھا۔ درے تک راستے میں کئی چھوٹی چھوٹی چٹانیں اور بڑے بڑے پتھر موجود تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی ان پتھروں کی آڑ لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور چند منٹ میں درے کے قریب پہنچ گئے۔ تم اس چٹان کے پیچھے رہو، میں درے کا جائزہ لے کر تمہیں کاشن دوں گا، इमरान ने एक छोटी चट्टान के करीब रुकते हुए कहा तो खावर और चौहान चट्टान की आड़ में बैठ गए और इमरान दर्रे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान के जाने के बाद खावर और चौहान चौकन्ने अंदाज में दाएं बाएं की निगरानी करने लगे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इनकी समात से हल्की सी मगर कर्बनाक चीख सुनाई दी और वो दोनों चौंक पड़े। वो चीख दर्रे की जानिब से उभरी थी। इन दोनों ने परेशान होकर चट्टान की आड़ से दर्रे की तरफ देखा जो वहां से तकरीबन 15 कदम के फासले पर था, लेकिन इमरान नजर न आया। यकीनन वो दर्रे के अंदर था। खावर और चौहान अंदाजा न लगा सके कि वो चीख इमरान की थी या किसी और की, इसलिए परेशान हो गए। यकीनन दर्रे में इमरान साहब का किसी से टकराव हुआ है, खावर ने चौहान से कहा। इस चीख से तो यही लगता है, बहरहाल हमें मालूम करना चाहिए। आओ, चौहान ने तश्वीश भरे लहजे में कहा। हो सकता है इमरान साहब का कोई एतराज हो, हमें इनके सिग्नल का इंतजार करना होगा, खावर ने कहा। तो चौहान कुछ न बोला। चंद लम्हों बाद इन्हें कदमों की हल्की सी आहटें सुनाई दी। चौहान ने फौरन चट्टान की आड़ से सर निकालकर दर्रे की तरफ देखा और इत्मीनान का सांस लिया। इस तरफ से इमरान आ रहा था। जल्द ही इमरान इनके करीब आ गया। आओ, रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लो, इमरान ने इनसे कहा और मुड़कर वापस दर्रे की तरफ बढ़ा। तो चौहान और खावर अपने अपने रिवॉल्वर निकालकर इसके पीछे कदम बढ़ाने लगे। इमरान साहब, हमने एक चीख सुनी थी। किसकी थी? खावर ने आश्चर्य से कहा। एक गार्ड की, और दर्रे में एक पत्थर की आड़ में बैठा आराम कर रहा था। मेरी आड़ सुनकर इसने पत्थर की आड़ से निकलकर मुझे देखा और जमीन से अपनी मशीन गन उठाने के लिए लपका, मगर मैंने इस पर जस्ट लगा दी और इसका सर पत्थर में टकराकर उसके मुंह में चीख निकल गई और मैंने इसके संभलने से पहले इसकी गर्दन तोड़ डाली। इमरान ने कदम रोके बगैर मुसलसल बोलते हुए कहा। क्या वो तन्हा था? चौहान ने पूछा। तो क्या बीवी के साथ था? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और इसके जवाब में खावर और चौहान मुस्कुराने लगे। मेरा मतलब था कि इसके साथ दूसरे गार्ड नहीं थे? चौहान ने कहा। नहीं, अलबत्ता दर्रे के अख्ताम पर यकीनन गार्ड्स होंगे क्योंकि दूसरी जानिब वादी में मिसाइल प्रोजेक्ट है। बहरहाल तुम चौकने रहो, इमरान ने जवाब में कहा और दर्रे में दाखिल हो गया। चौहान और खावर इसके पीछे थे। यहाँ पार्ट 7 खत्म हुआ। अगला हिस्सा पार्ट 8 सुनाते हैं।